ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 24 कैंटो 6 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 24। एतावता अलम अद्य निहरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवता गुण कर्म नामनाम विकुष्य पुत्रम अगवान घत अजामिल नारायण इति म्रियमाण इस्याय मुक्तिम। एतवता अलम अग्निहरणाय पुंसाम। एतावता अलम अपनिहरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनाम। संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनाम विकुरुष्य पुत्र भगवान मिलोपि विकृष्य पुत्र भगवान यद जा मिलोपी नारायणीत म्रियमाण याय मुक्तिम। नारायणीत म्रियमाण याय मुक्तिम। एतावता लगनिंगणाय पुंसाम। एतावता अलम अगनिगणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनाम। संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनाम विकृष्य पुत्र भगवान यदि जा मिलोपी विकृष्य पुत्र भगवान यदि जा मिलोपी नारायणीत म्रियमाणाय मुक्तिम। नारायणेति म्रियमाणाय मुक्तिम।
पढ़िए। एतावता अलम अगनिर्णाय पुंसाम्
माता जी को
एतावता
इतने से अलम पर्याप्त अग्निहराय पाप कर्मों के फलों को दूर करने के लिए पुंसाम मनुष्यों का संकीर्तनम सामूहिक कीर्तन भगवता भगवान के गुण दिव्य गुणों का कर्म नाम नाम उनके कार्यों एवं लीला के अनुसार उनके नामों का विकृष्य अपराध रहित चिल्लाना क्रंदन पुत्रम अपने पुत्र से अगवान पापी यत चूंकि अजामिल तक ने नारायण भगवान का नाम नारायण इति इस प्रकार म्रियमाण मरणासन इय प्राप्त की मुक्तिम मुक्ति अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणोता कर्मों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा सकता है। पाप फलों से छुटकारा के लिए इसी एकमात्र विधि की संतुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तो आप लोग हमारे साथ दोहराइए, अतएव यह समझना चाहिए, जोर से बोलिए, और अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कर्मों का कीर्तन करने से समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है।
पाप फलों से छुटकारा के लिए इसी एकमात्र विधि की संतुष्टि की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण के द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवन से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की कि एकमात्र भगवान का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरपतार भाव से उच्चारण न किया हो। समार्थ ब्राह्मण तथा मायावादी जन इसमें विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरण द्वारा किया जा सकता है। सायं प्रात गुणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण भी इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदरपूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी भी पुराणों से उद्धृत उद्धरण देते हैं, पापस्य भवन्ति स्मृतां तमहर्निशम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों का दिन रात अहिर्निशम स्मरण करके सारे पाप फलों से मुक्त बने। इसके आगे के भागवत से उद्धरण देते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जग मंगलम हसाम महतामपि कौरव्य विद्यु वैकांतिक निष्कृतम। ये सारे उद्धरण यह सिद्ध करते हैं, जो व्यक्ति भगवान के पुत्र नाम कार्य यश तथा गुण के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है, जैसा कि श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है। केवल भगवान का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रमाणिक कोश अमरकोश में कहा गया है, अहं भूषण पर्याप्त शक्ति वारण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण पर्याप्त शक्ति तथा संयम अर्थों में किया जाता है। यहां पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने से सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की उस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पुत्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, उल्टे उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूरी तरह अस्तव्यस्त हो जाती है, अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन रहा होगा। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़वत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह कृष्ण की कृपा से माया के पास से छूट सकेगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संतुत किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमापमर्थो महान। मनुष्य की मुख्य चिंता भगवान के प्रति अपना लगाव, उनके प्रति अपने प्रेम के बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में शिल्प सुना चकवती ठाकुर श्रीमद भागवत के निम्नतम श्लोक में 11वें स्कंद में उदित करते हैं, एवं धर्म मनुष्याणां उद्वा वात्मनि वेदिनां मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थो स्थान भिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिसने मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करे। इस श्लोक की टीका करते हुए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने कहा, भक्ति शब्द का वर्णन प्रेम उक्त से करते हैं, कह अन्य अर्थ मतलब अश्य भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। श्री विश्वनाथ चकवती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं, ममा अपराधुक्ता नाम नामान एव अरत्यधम अविश्यांति प्रयुक्तानी ताने वार्थक राणी च। यदि कोई शुरू शुरू में अपराध भी करे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता रहे, तो बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापस्य भवन्ति स्मृतांग तहरनिशम, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की संतुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उदित करने वाले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रंजथा। इस कलह तथा पाखंड के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की संतति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव निरापद रहे। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमश्रुते तप्तकञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
जो लोग दर्शन करने आए हैं बच्चों को हल्ला न करने दें अपना। चैतन्य भागवत में मुरारी गुप्त प्रसंग में एक प्रसंग है कि भगवान का नाम इतने पापों का क्षय कर सकता है जितने पाप मनुष्य फैक्ट्री खोल के बना भी नहीं सकता। एक नाम। चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत है चैतन्य चरितामृत में। ये तो एक नाम हुआ, आधा नाम भी एक सुअर का और दृष्टांत। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कथा सुनाते कि एक मुस्लिम भाई, मुस्लिम लोग सुअर से बहुत चिढ़ते हैं और सुअर को गाली देते हैं हरामखोर, उनकी गाली फेमस है हरामखोर। तो एक मुस्लिम भाई किसी जंगल के रास्ते जा रहे थे कि रास्ते में जंगली सुअर टकरा गया और एकदम उसने आक्रमण कर दिया। तो मुस्लिम ने अपना बचाव करते हुए और उस सुअर को हटाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, हरामखोर हट, हरामखोर हट। लेकिन वो सुअर छोड़ा नहीं, वो झपटा मारा। तो सुअर के प्रहार से उस मुस्लिम की मृत्यु हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, सनातन वो मुस्लिम बैकुंठ चला गया जबकि वो सुअर को गाली दे रहा था। और हरामखोर में पूरा राम और कृष्ण नाम भी नहीं है, ह के बाद राम है फिर खोर है, बीच में सिर्फ राम का नाम। लेकिन इन दो नामों के द्वारा उस सुअर को इंगित करते हुए, जबकि भगवान का नाम नहीं जप रहा था, लेकिन और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो ये बात सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रमाणित बात क्या हो सकती। इसलिए भगवान का नाम किसी भी स्थिति में, और इस अजामिल प्रसंग में तो बताया कोई किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ से गिर जाए अनजाने में, फिसल जाए, किसी पहाड़ी रास्ते से हम जा रहे हैं पांव फिसला गिरे, तो पहाड़ ये कह के नहीं छोड़ देगा कि ये गलती से फिसला है, इसकी हड्डी पसली नहीं तोड़ूं, क्योंकि पहाड़ का काम है हड्डी पसली का चकनाचूर करना। कोई नदी हम क्रॉस कर रहे हैं और पानी के बहाव में के प्रभाव में आके बहने लगे, तो पानी हमें यह कह के नहीं छोड़ देगा कि इसको तैरना नहीं आता, इसको किनारे लगा दूं, क्योंकि पानी का काम है बहाना। वैसे भगवान के नाम का काम है तारना, चाहे कैसे भी लो। रामायण में वाल्मीकि ऋषि की कथा आती है, वो उल्टा नाम जपते थे, सीधा भी नहीं। नारद जी ने जब उनको उपदेश किया कि तुम, वो डकैत थे पहले, एक प्रसंग में ऐसी कथा आती है, तो नारद जी से कहा अब हमारा कैसे उद्धार होगा, कहा तुम बहुत बड़ी पापी हो, तुम भगवान का सीधा नाम जपने योग्य नहीं, उल्टा जपो। तो क्या जपा, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपा हरि जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान।
तो एक डकैत भी भगवान का उल्टा नाम जपने से, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान रामायण जैसे ग्रंथ की रचना उन्होंने की। इसे नामाश्रित अजामिल प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी की जगह पूछते हैं कि यह कथा हमने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि इससे पहले की कथा पंचम स्कंद की है, नरकों की, 28 तरह के नरकों का वर्णन, एक एक बुरे कर्म के लिए एक एक नरक, सारे नरकों का जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज ने कहा ऐसी कोई विधि है किस नरकों में न जाना पड़े। नरक का मतलब धोबी घाट, जो कपड़ा घर में साफ नहीं होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए धोबी घाट। और धोबी क्या करता है, घाट पर ले जाके कपड़े को पटक देता है, खाल निकाल देता है। इसे नरक उन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे समझाने पर भी नहीं समझते हैं, अंत में धोबी घाट। तो जब सुना धोबी घाट कितना खतरनाक है, 28 तरह के धोबी घाट, तो परीक्षित महाराज ने कहा कोई ऐसा उपाय है कि धोबी घाट के चक्कर में न जाना पड़े। तभी अजामिल प्रसंग की कथा सुनाई है, एक घाट वो है भगवान के नाम का घाट, हरि नाम घाट। अगर कोई व्यक्ति पाप करे, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई जगह बता रहे हैं, वैसे तो 10 नाम अपराध में भी एक अपराध है भगवान के नाम पर पाप करना, लेकिन अगर कोई करता रहे तो एक न एक दिन नाम के प्रभाव से, भगवान की लीला के यश के प्रभाव से उसके पाप की हार होगी और नाम की जीत होगी। इसे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी है, उसको नाम का आश्रय लेकर के छोड़ना नहीं चाहिए। नाम जपने की क्षमता भी हर किसी के नहीं होती। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आता था इधर जुहू से, तो उस पर कोई भूत लग गया था घर में, तो इधर मंदिर आता था, तो जब वो घर जाता तो भूत उसको बोलता मंदिर जाएगा, भगवान का नाम जपेगा, जपने नहीं दूंगा मैं तुझे ऐसा। क्योंकि मनुष्य के बुरे कर्म भगवान का नाम भी हर कोई नहीं जप सकता, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। बुरे कर्म कई तरह के विघ्न, ये भगवान के नाम को नहीं जपने देते, कथा नहीं सुनने देते। लेकिन व्यक्ति कोई निरंतर प्रयास करे, जैसे हम गोली खाना नहीं चाहते, इंजेक्शन लेना नहीं चाहते, लेकिन रोग से मुक्त होना है, आंख बंद करके डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो क्या बोलता है, उधर को देखो तक। तो कैसे भी दवाई अंदर चली जाए, गोली कैसे लेते हैं, जीभ के बीच है, ऊपर से पानी सीधे अंदर, अंदर जाना चाहिए। तो कितनी भी परेशानी आए, तात्पर्य के आश्रय में, भगवान के नाम के आश्रय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा एक प्रसंग है पद्म पुराण में, कई लोगों का अभिप्राय यह है कि हम भी अजामिल की तरह जिंदगी भर पाप करेंगे, छोटे वाले लड़के का नाम नारायण रख देंगे, मरते वक्त उसको तकिए के सामने बिठा देंगे और नारायण नारायण बोलेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये जो अजामिल प्रसंग है ये स्पेशल है, रेयर है बहुत, ऐसा होता नहीं। जो बड़े बड़े पापी लोग हैं वो इसी प्रसंग को ज्यादा पसंद करते हैं अजामिल वाले, कि जिंदगी भर खाओ पियो अनाप शनाप सब काम करो, छोटे वाले नाती पोते का नाम नारायण रख दो और मरते वक्त बोल देंगे परिवार वालों को, इसको सामने ही बैठा के रखो। ऐसा हर केस में नहीं होता है।
जरूरी है वो बच्चा उधर ही रहे, हो सकता खेलने गया हो, उस समय स्कूल गया हो, ट्यूशन गया हो, फिर क्या करोगे? फंसने की नौबत आई नहीं आई? कई लोगों का ऐसा विचार है। तो पद्म पुराण में एक जगह ऐसा वर्णन है कि नारायण नाम से अजामिल की मुक्ति कैसे हुई, कि नारायण नाम ऑथराइज है, महात्मा का दिया हुआ है। नहीं तो आम, अगर ऐसी कथा हम सुना दें तो आम आदमी क्या सोचेगा कि अंतकाल में नारायण नारायण जप लेंगे, जैसे हमने बताया, उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अजामिल ने अपने जो लड़के का नाम नारायण कहा है, ये ऋषि द्वारा प्रमाणित है, गुरु द्वारा। पद्म पुराण में कथा है कि नारद जी हिमालय की तराई में, तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने हिमालय के जंगल में देखा कि एक बहुत बड़े तपस्वी महात्मा, लेकिन उनको पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। तो नारद जी ने कहा, आपके पूरे शरीर में कोढ़ और आप इतनी तपस्या करते हैं। तो तपस्वी ने कहा, कोढ़ हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। अब ये नहीं कि मैं अपनी तपस्या को कोढ़ ठीक करने में लगा दूं, मेरी सब तपस्या कोढ़ ठीक करने में जाएगी, मैं अगले जन्म में क्या करूंगा? तो मैं पाप का भी क्षय कर रहा हूं, भोग रहा हूं, और जो मैं भजन करता हूं तपस्या, ये अपना परलोक सुधारने के लिए। नारद जी ने कहा, फिर भी भगवान की सेवा, उनको नैवेद्य प्रसाद बनाना, भोग लगाना, उसके लिए अच्छा शरीर होना ठीक है। तब नारद जी ने उस तपस्वी को सुझाव दिया कि अगर तुम किसी पापी के घर का अन्न खाओ तो तुम्हारा कोढ़ दूर हो सकता है। तब वो तपस्वी पर्वत से नीचे उतरे और नीचे गांव में आए और पूछा कि इस इलाके में सबसे खतरनाक पापी कौन सा है। तो सबको, बच्चे बच्चे को मालूम है अजामिल है, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर की हेडलाइन में उसी का नाम आता। तो किसे, हाँ हाँ ऐसे ही चले जाओ, जाओ जाओ। तो महात्मा अजामिल के घर गए, अजामिल घर पर नहीं था उस दिन। तो उसने अजामिल, और उस दिन अजामिल की पत्नी खा के बर्तन भी धो चुकी थी, और ये महात्मा ऐसे टाइम पर घर में पहुंचे और कहा, हम कुछ आपके घर का अन्न खाना चाहते हैं। तो वो इतने बड़े पापी थे, बदनाम थे उस क्षेत्र में, कि कोई इनका मुंह देखना पसंद नहीं करता। जब अजामिल की पत्नी ने देखा कि हमारे घर एक महात्मा आए हैं और भोजन खाने की इच्छा रखते हैं, तो उसका हृदय एकदम पिघल गया कि इतने वर्षों बाद हमको तो कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता, हमारे घर के रास्ते में से कोई आता नहीं है कि इनका मुंह देखना पड़ेगा, और इतने उच्च कोटि के महात्मा आज हमारे घर पर आए हैं। तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि हुई, और उसने मन ही मन विचार किया, इतनी बड़ी मैं पापिन, जिसने अजामिल जैसे ब्राह्मण पुत्र का जीवन बर्बाद कर दिया, और ऐसी स्त्री के हाथ का ये महात्मा भोजन करेंगे। अपने अवगुणों को याद करने लगी, क्या मैं इतने लायक हूं कि मैं महात्मा को भोजन करा सकूं? मैं तो पापिन हूं, मैंने पाप किए हैं। जब महात्मा खड़े रहे, बार बार कहा, बेटी हमें कुछ भोजन कराओगी, खिलाओगी? तब उसने कहा, जो मन में सोच रही थी, महात्मा के आगे बखान कर दिया उसने। सारे अवगुणों को, अपने अपराधों को सब महात्मा के सामने कह दिया, मैं पापिन हूं, मेरा मुंह देखना पाप है, आप मेरे हाथ का खाओगे? और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, बड़े तपस्वी, और उनके आगे बखान करना मतलब भगवान के आगे बखान करना। और संत और भगवान का यह स्वभाव होता है, अगर उनके आगे कोई अपना बखान कर दे अवगुणों का तो उसको अपना लेते हैं, भगवान भी अपना लेते हैं, भगवान का स्वभाव है। अब उनके भक्तों का भी स्वभाव होता है कि तुरंत अपना लेते हैं। तो कहा बेटी मैं जरूर तुम्हारे घर का अन्न खाऊंगा। तो कहा मैं तो पका चुकी हूं, बर्तन भी धो चुकी हूं। महात्मा ने कहा मैं मुझे कोई भरपेट नहीं चाहिए, मैं आपके घर का अन्न का टुकड़ा खाना चाहता हूं। देखो देखो जो बर्तन तुमने धोए हैं कहीं जूठन कोई बच गई हो। तो एक पतीली में चावल जिसमें बनाती थी, तो एक पका हुआ चावल का दाना एक किनारे पर रह गया था। तो महात्मा ने वो अन्न मुंह में डाला और जैसे ही डाला पूरा कोड़ उनका धो और बहुत प्रसन्न हुए। एक छोटा बच्चा हुआ था, उसका नामकरण नहीं हुआ था। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो अचानक महात्मा की दृष्टि उस बच्चे पर गई और अजामिल घर में नहीं थे, उस बच्चे के नामकरण के लिए पैसा जुटाने गए थे बाहर। तो महात्मा ने कहा तुम लोग यज्ञ बाद में कर लेना, लेकिन मैं इस बच्चे का नामकरण आज करके जाता हूं, इसी नाम से इसको पुकारता हूं। तो उस तपस्वी ने उस बच्चे को नारायण नाम दिया, वो जो हिमालय की कंदराओं से आया था तपस्वी। तो महात्मा द्वारा जो नारायण नाम बच्चे को दिया है उसके द्वारा वो नाम सार्थक हो गया, ऑथराइज हो गया। तो जब उसने पुकारा तो तुरंत मुक्ति का कारण बना। नाम में भी हमारे आचार्यों की जब आप टीकाएं पढ़ेंगे, जैसे कृष्णा, कृष्णा नाम द्रौपदी का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध उच्चारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा में कृष्णा शब्द द्रौपदी के लिए भी आता है। एक बार एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब दुशासन और दुर्योधन ने, कौरव पक्ष ने द्रौपदी की साड़ी फेंक खींची, उसको बेइज्जत करना चाहा, तो द्रौपदी ने पुकारा है द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तो आपने प्रसंग में भी देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा कि द्रौपदी की कुछ साड़ी का हिस्सा खींच लिया था दुशासन, आपने फोटो में देखा होगा कुछ हिस्सा नीचे है ना खींचा। तो द्रौपदी ने भगवान को पूछा कि आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं, उसका लेश मात्र कोई नुकसान नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि द्वारिकाधीश आपने मेरी इज्जत तो बचाई, लेकिन इतनी साड़ी भी क्यों खींचने दी आपने? दुशासन ने मेरी ये 2-3 मीटर साड़ी जो खींची है इतनी भी क्यों खींची? तब भगवान ने कहा तुमने हमको किस नाम से पुकारा था? तो द्रौपदी ने कहा मैंने कहा था द्वारिकाधीश। तो भगवान ने कहा द्वारिकाधीश का मतलब द्वारिका का राजा, तो द्वारिका से दिल्ली आने में टाइम लगता है ना, द्वारिका के राजा को चल के आना पड़ेगा हस्तिनापुर। अगर तुम कह देती है अंतर्यामी, हे कण कण में व्याप्त, तो उधर से ही खंभे से भगवान प्रकट हो गए। तो कई दफे नामोच्चारण में और रूप गोस्वामी पाद भक्ति सामत सुंदर में 3 तरह की भक्ति का वर्णन करते हैं, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। भक्त भी 3 प्रकार के हैं, कनिष्क अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। नाम की भी 3 स्टेज हैं, कौन सा? नामापराध, दूसरा नामाभास, तीसरा शुद्ध नाम। कनिष्क अधिकारी, आरोप सिद्धा भक्ति, नामापराध, एक कैटेगरी। संघ सिद्धा भक्ति, मध्यम अधिकारी और नामाभास। उत्तम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, नाम कौन सा हुआ? नामाभास के बाद शुद्ध नाम। उत्तम अधिकारी, शुद्ध नाम, संघ स्वरूप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति क्या है? कि मेरा आरोप है ये भक्ति है, वास्तव में वो भक्ति नहीं है। जैसे हम किसी पर आरोप लगाते हैं कि इसने 200 करोड़ रुपए का गमन किया, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, आरोप लग गया, फिर छानबीन होगी, फिर कभी आरोप साबित होंगे, अभी खाली आरोप लगाया गया है। वैसे कनिष्क अधिकारी, नामापराध में व्यक्ति जो नाम जप करता है वो तो नामापराध है, स्थिति कनिष्क अधिकारी की है, लेकिन भक्ति आरोप सिद्धा भक्ति है। मेरा आरोप है भक्ति है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जेठ के महीने की तपती हुई गर्मी में किसी आम के पेड़ के नीचे छाया में बैठे और आम के फलों का है या उसकी मंजरी की सुगंध उसको सूंघने को मिले, लेकिन वो पथिक ये विचार करे ये जो सुगंध आ रही है बबूल के पेड़ से आ रही है, आम के पेड़ से नहीं, जबकि सुगंध मंजरी की आ रही है, तो व्यक्ति का आरोप है ये भक्ति है, वास्तव में वो भक्ति नहीं है, इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। यही नामापराध हुआ। संघ सिद्धा, किसी का संग करने से भक्ति करना। जैसे कई दफे हम कथाओं में बताते हैं, अभी दादर मार्केट से फूल आया, फूल बना रहे हैं ना अंदर माला, तो इसके अंदर कई कीड़े भी होंगे, कई फूल वाले कीड़े भी होते हैं, झाड़ना पड़ता है, तो कोई कीड़ा दादर से सोचे मैं हरे कृष्ण मंदिर में राजबिहारी का दर्शन करूं, दादर के फूल मार्केट में फूल के अंदर एक कीड़ा है, उसकी इच्छा है मैं भगवान के दर्शन करूं सामने एकदम, और कभी कभी कोई भाग्यशाली कीड़ा को ऐसी सोच आई, इच्छा हुई, और तुरंत मंदिर का भक्त फूल लेने गया, उसी फूल को खरीद के ले आया जिस फूल के अंदर वो कीड़ा था, और अनजाने में कोई माताजी फूल बना रही है उस फूल को झाड़ना भूल गई और माला में उसने पिरो दिया, और माला ठाकुर जी कृष्ण के गले में चली गई। अब कीड़ा सोचता है मैं दादर के मार्केट में से ठाकुर जी के गले में आ गया, देखो, और दोपहर में राजभोग ठाकुर जी को पुजारी ने भोग लगाया, 56 भोग। अब कीड़े का विचार क्या है, दादर से तो मैं इधर आ गया, थोड़ा नीचे खीर भी खा गया हूं, भोग थाली में अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं, थोड़ा सूंघ के आऊं तो, और वो फूल से बाहर आया और भोग लगी हुई थाली में गया और पुजारी की नजर उससे पड़ गई, तो क्या होगा, पुजारी पकड़ के उसको रोड पर फेंक देगा। संग सिद्धा भक्ति मतलब भगवान के भक्तों के साथ रह के भक्ति करना, सेवा करना, भजन करना। जैसे वो कीड़े ने विचार किया मैं ठाकुर जी के गले में आ गया, अब भोग भोगूं थोड़ा, तो देखूं तो आनंद लेके प्रसाद का, और नतीजा क्या निकलेगा, फिर गडर में जाना पड़ता। वैसे कोई भक्त विचार करे, बहुत साल हो गए अब भक्तों के साथ भक्ति करते करते, 25 साल 30 साल हो गया, अब अकेले में सब कुछ करना चाहिए, अब हो गया क्या, माया पकड़ के दोबारा फिर गडर में। इसलिए संग सिद्धा भक्ति, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए संग सिद्धा भक्ति में परिपक्वता तब तक है जब तक भगवान के भक्त वैष्णवों का संग बना रहे, और स्वरूप सिद्धा भक्ति शुद्ध नाम और उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ये रूप गोस्वामी का भक्ति सामंत सुंदर का श्लोक और दूसरा नारद पंचदात्त का श्लोक। शुद्ध भक्ति क्या, न अन्य अभिलाषिता सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम, एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, टॉपकिन स्क्वायर पार्क में पेड़ के नीचे बैठे, क्या कहा, हे प्रभु कली काल में अगर आपका नाम सच है, अगर भगवान के नाम पे ही सब कुछ है तो मैं आपके नाम से कीर्तन शुरू करता हूं, कहा ना, और करतार निकाली, मृदंग वगैरह हारमोनियम तो था नहीं, वैसे कीर्तन करने लगे। और उस कीर्तन का प्रभाव है कि आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग उस कीर्तन का आनंद ले रहे। ये उत्तम अधिकारी की शुद्ध नाम का प्रमाण है और स्वरूप सिद्धा भक्ति का प्रमाण है। इसे उत्तम अधिकारी को कुछ करना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ एक ही काम करना है, कीर्तन, और कीर्तन करने से सब कुछ हो जाता है। नारद जी ने एक बार एक डाकू को भक्त बनाया। पहले तो डाकू ने बहाना किया, मैं मेहनत नहीं करूंगा, खाऊंगा क्या, क्या मेरे घर पर कोई देके जाएगा। अरे नारद जी ने कहा तो नाम जब तो शुरू कर। बहुत नामी डकैत था, खून करता, लूटपाट करता, पकड़ा नहीं जाता। तो एक दिन नारद जी की बात मान करके वो डाकू भक्त बन गया और एक पेड़ के नीचे माला फेरने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब डाकू माला तो फेर रहा था लेकिन भूख भी लग रही थी, खाना के दर से आएगा। तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन आसपास के इलाके में खबर फैली कि फलाना फलाना जो खतरनाक डकैत था, सुना है आजकल माला फेर रहा है, और बंदूक वगैरह तलवार सब फेंक दिए उसने। तो आसपास के लोग दर्शन करने आने लगे, अच्छा देखे तो कैसा जप कर रहा है। तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, कोई केला लेके जाता, कोई सेब, कोई दूध, कोई रबड़ी, कोई घी, और ये समाचार पूरे इलाके में फैल गया, जहां जहां तक उसका लोग उसको जानते थे। और एक महीने में जो पेड़ के नीचे वो बैठा था, कई एकड़ एरिया में इतना सामान जमा हो गया। नारद जी एक महीने बाद आए, कहा ठीक चल रहा है। उसने कहा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना अनाज में देखूंगा, इतने फल देखूंगा। तो नारद जी ने कहा बंदूक चलाने की क्या जरूरत है, तलवार दिखाने की क्या जरूरत है, सबको भगवान का कीर्तन करने को कहो, बोलो खुद भी बोलो। तो भगवान के नाम पे हो जाता है सब। पूरी तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, किसी भी स्थिति में हो भगवान के नाम का आश्रय लेना। तो कलि काल में भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम चित्र रूपी दर्पण में जमी हुई धूल का मार्जन करता है, सफाई करता है। माया की धूल जम गई है। हरे कितना जिसकी धूल जम गई। कई लोग कृष्णा नहीं बोलते, कितना हरे कितना 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 हरे हरे। जिनके मुंह में दांत नहीं है ये लोग बोलते हैं, वेदांती लोग। जिनके मुंह में दांत नहीं उनको बोलो बोलो हरे कृष्णा, अरे कितना। क्योंकि जिंदगी भर कितना कितना कितना, मरते वक्त भी कितना कितना। तो कृष्ण नाम शुद्ध उच्चारण सबके मन में नहीं आता, जपते तो सब हैं। तो अलग अलग भावों से जाकी रही भावना, जैसी जैसा चश्मा जिसने पहन रखा है वैसी दिखाई। एक किसान की बहन सूखी घास नहीं खाती थी, हरी खाती, और सूखा पड़ गया। अब वो सूखी घास लेके जाए खाए नहीं, दूध भी देना कम कर दिया। एक महात्मा के पास गया किसान, क्या करूं दूध कम हो गया क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। महात्मा ने कहा भैंस को हरा चश्मा पहना दो। तो हरा चश्मा पहनने से सूखी घास भी हरी दिखाई देगी, खूब खाएगी तब दूध देगी। इसलिए अगर ऐसे नाम नहीं आता कैसे भी जपो। अगर अंदर से नहीं जपा जाता बाहर से जपो। आज नहीं जपा जाता फिर भगवान ऐसी मार मारेंगे, जपना पड़ेगा। तो सब विधियां हैं, कैसे भी जप सकते। और खुद नहीं जप सकते भगवान के पास ही विधान है, फिर ऐसा लटका देंगे जपना पड़ेगा। इससे पहले ही सुधर जाएं उसमें ठीक ठाक रहेगा। कई अपराधी आपने देखे होंगे, जेलों में सड़ेंगे 4 साल 5 साल 10 साल, वो ठीक है, लेकिन वृंदावन में धाम में कभी 1 महीना नहीं रहेंगे। आपने देखा बड़े बड़े नामी अपराधी जेलों में सड़ रहे हैं। तो जेल में रहना पसंद है 4 साल 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी भी देंगे, सब देंगे। लेकिन कभी उनके मन में ऐसा विचार आता है चलो समझ लें हम जेल ही है तो वृंदावन चले जाएं 1 महीना, तो ये विचार आता नहीं। इसलिए फिर जेल में भी पूजा होती है भगवान की। जेल में जितने भी अपराधी हैं उनके लिए मंदिर बना के रखती है गवर्नमेंट, उसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है और उसमें रणछोड़ भगवान नाम से उनकी पूजा होती है कि भगवान कभी जेल से हमको ही बाहर करो। तो इन किन प्रकार भगवान अपना नाम जपाई लेते हैं। कई लोगों को आपने, शिल्प उपाजी भी कई जगह कहते हैं आपको, लोगों को बोलो हरे कृष्णा जपो, तो कई लोग बोलते हैं हम हरे कृष्णा नहीं जपेंगे। तो हरे कृष्णा तो बोल ही रहे हो तुम, मैं हरे कृष्णा का जाप नहीं करूंगा। तो हरे कृष्ण मुंह से आया नहीं आया? नहीं, सब तो बाद में आया। तो इन किन प्रकार व्यक्ति जपता है। इसलिए सोच समझ से तात्पर्य में यह भी बताया है कि अजामिल ने तो बच्चे का नाम नारायण लिया, लेकिन जो लोग सोच समझ करके गुरु चरणा से धो करके होशो हवास में भगवान का नाम ले रहे हैं तो उनका जरूर उद्धार होगा, ऐसा लिखा। इसी भगवान के नाम का आश्रय, ये संसार में कोई हमारा नहीं है, कोई है बहम है वो मेरा, लेकिन जब मर जाते हैं कोई किसी का है, थोड़ा सीरेज भी हो जाए कोई किसी का है, व्यक्ति बीमार हो जाता है बचने की आशा नहीं तो परिवार वाले भी सोचते हैं जल्दी। इसलिए भगवान सिर्फ हमारे हैं, हम भगवान। संसार के जिनके प्रति हमारा माया मोह है ये हमारे नहीं है। देहे सीमांस रुधिरे भीमती तजतम जाया सुता दुसदा ममतंग विमुच्य पश्याने सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पद्म पुराण में गौकर्ण गीता का श्लोक है। धर्मम भजस्व त्यज धर्मलोकान सेवस्व साधु पुरुषांजलि पाद अन्यस्य दोष गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितरांग पिवत्वम। छोड़ो सब, देह के संबंध को छोड़ो। देहस्थि मानसरोदरे भीमति तजत्तम। हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी सांसारिक वृत्तियों को छोड़ते नहीं। आपने शहर में देखा होगा, कभी गार्डन में पार्क में जाइए, सब बूढ़े लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं। तो जब रिटायर हुए सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे तो हरी चर्चा तो होती नहीं, फलाने का लड़का फलाने की लड़की उसकी कुंडली जुड़ा दो उसका ये कर दो, दिन भर उनकी यही बात। अब पहले तो अपनी कुंडली जुड़ाई और अपनी कुंडली तो अभी फट गई, अब दूसरे की जोड़ो, अपनी फट गई ना अभी इसलिए पार्क में घूम रहे हैं। तो ये भाव जाता नहीं। इसलिए कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले समागत्य वस्तीत लोका सुनुद्धम तजद्धम। यमराज की दूती आके कहती है वृद्ध मनुष्य के कान में, कृतांतस्य दूती कहते हैं यमराज के दूत को। वृद्धावस्था मतलब यमराज का दूत हमारे शहर में आ गया है। जब व्यक्ति का शरीर वृद्ध हो जाता है, अस्थियां थक जाती हैं, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ लेना चाहिए यमराज के घर का सदस्य हमारे घर में आ गया। और वो कान पर कहता भी है, समझ जाओ अभी, जरा कर्ण मूले, कान में कहता कि संसार की वृत्तियों को छोड़ो, त्यज धर्मलोकान और भगवान के नाम का जाप करो, सेवा कथा रसम हो नितरंग पिवत्वम। हमने तो शहर में यहां तक देखा है कि कई शेड घरों की जो लेडीज है ना एकदम बूढ़ी हो जाती हैं, तो मस्जिद कार में जाएंगी पीछे की सीट में और मेकअप का थैली उनके हाथ में ही रहता है, एकदम वृद्ध हो गई है, कोई देखना नहीं चाहता उनकी तरफ। वो मस्जिद के पीछे की सीट से ड्राइवर तो गाड़ी चला के रहता है, वो मेकअप के शीशे से घर वाले भी नहीं चाहते घर वापस आए, लेकिन वो चाहती है मैं कैसे घर वापस जाऊं, लगे रहे। उससे सुंदर तो दिखते नहीं, उल्टे जोकर और हो जाते हैं। जितना मेकअप करोगे मतलब जोकर, जितने लोग बाल डाई करते हैं काले, जोकर दिखते हैं सब, उनको लगता है हम काले दिख रहे हैं, बाल डाई कर लिया, आदमी जोकर हो जाता है एकदम। जोकर क्यों हो जाता है? जब भगवान की दी हुई चीज नहीं रही फिर नकली करोगे जोकर ही हो। इसी जितना समय इसमें बर्बाद करते हैं उतना भगवान की सेवा में। एक बार गुरु नानक हॉस्पिटल में हमने देखा एक 70-75 साल के एक वृद्ध आदमी, चेहरा सूजा हुआ इतना बड़ा, और इमरजेंसी वार्ड में आया था, और बच्चे लोग गाली दे रहे थे ये बुड्ढा सुधरता नहीं। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया स्वेलिंग है? तो कहा कल हमको पगार मिली थी, मैंने इनको कुछ पैसे दिए खर्चे के लिए, और ये गोदरेज का शैंपू ले आए। गोदरेज का शैंपू आता है ना बाल काले करने वाला, उसे एलर्जी होती है सबको, इतना क्या आता है सबको, माफिक नहीं आता हो। तो गोदरेज का वाशमोल आता है ना बाल काले करने वाला, तो शीशी लाए उन्होंने सब बालों पर घिस दिया, वो केमिकल था, और इनको केमिकल की एलर्जी, पूरा थोपड़ा सूज के इतना बड़ा हो। अब बच्चे बोले वाशमोल की शीशी 50 रुपए की, और गुरु नानक में उन्होंने बोला 50,000 रुपए डिपॉजिट भरो। अब वो बाहर बात कर रहे थे कैसे मरता है, ये मर जाता अच्छा था, क्योंकि 50,000 का बिल बैठा दिया। तो जोकर अलग बनते हैं और परिवार के लोग अलग मजाक उड़ाते हैं। तो क्यों ना वो समय हम भगवान की सेवा में हरि कथा सत्संग में गुजारे हैं, तो समय का सदुपयोग भी होगा, दुर्गति नहीं होगी, और किसी भी स्थिति में भगवान के नाम का आश्रय लेकर के इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। ऐसा ही अजामिल प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है। मैं इतना ही कहकर यहां पर विराम देता हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो पूछ लीजिए, हमको जवाब देना नहीं भी आएगा तो प्रसादम में हम जवाब दे देंगे ऊपर। तो किसी का कोई प्रश्न है?
कोई भक्त शरीर छोड़ने के टाइम पे खुद स्मरण नहीं कर पाए, मगर उसके आजू बाजू सब भक्तों ने 4-5 घंटा हरिनाम कीर्तन किया, या उसने रिकॉर्डेड सीडी सुना, तो क्या वो भगवत धाम जाने के लायक हो सकता है?
कोई व्यक्ति खाना ना खाए, आजू बाजू के लोग सब खाएं। तो क्या उसका पेट भर जाएगा? आपका प्रश्न वैसे ही है।
तो फिर हम क्यों कीर्तन करते हैं जब यहां कोई डिवोटी?
वो थोड़ा बहुत, जैसे कोई आदमी पिज्जा खा रहा है उसकी खुशबू आएगी, पेट थोड़ी भरेगा। तो वो जो कीर्तन कर रहे हैं आगे के लिए थोड़ा ठीक ठाक होगा, उद्धार नहीं होगा उससे। हरे कृष्ण,
और समझो कोई हरे कृष्ण के बदले हरे राम बोल देगा तो अयोध्या जाएगा कि?
अयोध्या जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा? राम जी अयोध्या के हैं तो अयोध्या जाएगा। और जैसा आपका जैसा सवाल वैसा जवाब। बोले गन, अच्छा आपका माइक दो। जैसा माल वैसा, जैसा भाव वैसा माल।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने बताया कि वो जो ऋषि थे अजामिल के घर में आए और बच्चे का नाम नारायण रखे, वो प्रमाणित कर दिए। तो कुछ समय पहले प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे, जब ये पिक्चर निकला था दम मारो दम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, तो प्रभुपाद जी के पास जब शिकायत लेकर आए और बोले कि ऐसा हम लोग का बदनामी हो रहा है, इसको बंद कराना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, उसको बोलने दो, उस नाम से जो है सबका कल्याण होगा। तो इसमें कोई आचार्य जो है इस पिक्चर को नहीं बनाए, कोई ठेपा नहीं लगाए, तो फिर कैसे इसमें उधार?
प्रभुपाद जी ने कहा कि कल्याण होगा, कल्याण हो गया थोड़ी बोला, होगा पता नहीं कब होगा। जैसे हम बोलेंगे हम अभी खीर बनाएंगे, अभी थोड़ी खीर बनी है, बनाएंगे, बनेगी कि नहीं बनेगी बाद में देखा जाएगा। एक बात अच्छी कह दी, सिग्नल दे दिया, क्या उसका कल्याण हुआ? जिसने दम मारो दम बनाया कल्याण हुआ? लंदन में मरा है, अभी मर गया। अभी कल्याण किसको कहते हैं? अगर वो भजन मार्ग में आ जाता, मरते मरते अंतिम सांस तक तो पिक्चर ही बना रहा था वो, अगर वो फॉलो करेंगे उसको, उसमें आएंगे तब कल्याण होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। गीता के 18 अध्याय में श्लोक है। ऐसा होंगे, इन्हीं श्लोकों की चैतन्य चरितामृत में व्याख्या की गई है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की वार्ता है, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की वार्ता है, कई भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक कोटेशन चैतन्य महाप्रभु पूछे हैं राय रामानंद से, तो उनमें ये बातें स्पष्ट बताई हैं कि वहां पर यह मतलब है कि अगर कोई आएगा इसमें पदार्पण करेगा आश्रय लेगा तब कल्याण होगा, एक सिग्नल दे दिया। लेकिन उसका कल्याण हो गया ऐसा प्रमाण है। अभी हम ही कह रहे हैं कि भगवान के नाम के जप से कल्याण होगा, जब कोई जपेगा तब।
प्रभु जी आप बताए थे कि जो मुसलमान था वो सुअर को बोला हरामखोर।
हरामखोर, ये भी स्पेशल कैसे, चैतन्य महाप्रभु भी सबकी चर्चा नहीं करते हैं। वो कोई अभी जैसे अजामिल प्रसंग बहुत रेयर है, अजामिल प्रसंग भागवत में रेयर है, हर जगह ऐसा प्रसंग नहीं है, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो स्वर की घटना कह रहे हैं तो ये सब स्वरों के लिए नहीं है। कोई भाग्यशाली स्वर होगा, अब कोई कहे कि भगवान ने बड़ा अवतार लिया तो सब स्वरों की पूजा करें, जो गंदे नाले में टॉयलेट खा रहे हैं इनको अगरबत्ती दिखाएं? वो भगवान शुकर अलग है, ये नाले के शुकर अलग है। प्रसाद के लिए भी लेट हो रहा है, जल्दी पूछो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जगह आपने कहा कि भगवान की प्रशंसा करना और उनकी वखान करना, उनके बारे में बोलना, ये भगवान को पसंद है, ऐसे भक्तों को पसंद करते हैं। साधारण जगत में, भौतिक जगत में भी किसी कोई जज है, अगर एक अपराधी खड़े होकर के रोज जाके उसका तारीफ करे कि आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो, खूब चढ़ाए उसको, तो जज कभी उसके पक्ष में फैसला नहीं करेगा, चापलूसी होती है। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उनकी?
आपका उदाहरण है, भगवान सुप्रीम जज हैं, ये ऑर्डिनरी जज हुए कुछ सालों के लिए। जैसे संदीपनि मुनि के प्रसंग में, संदीपनि मुनि का लड़का मर गया है, तो नियम तो यह है कि जिसकी उम्र पूरी हो गई, रोटियां पूरी हो गई, वही मरता है ना। लेकिन यहां पर भगवान बीच में आए हैं, उन्हें जब संदीपनि मुनि की पत्नी से कहा कि गुरु माता मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं, तो रोने लगी, कहा मेरा लड़का एक समुद्र में खेलने गया था, मर गया। तो भगवान पहले यमराज वहां गए समुद्र के पास, तो पांचजन्य शंख वहां से मिला, फिर यमलोक गए भगवान। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम यमलोक गए तो यमराज ने कहा मैं आपके गुरु का लड़का लाके देता हूं, लेकिन भगवान से ऐसा नहीं कहा कि अंदर बैठिए सोफे में तब तक लाके लड़का देता हूं, क्योंकि यमराज भी जानता है कि अगर ये अंदर आ गए जितने लोग इनको देखेंगे सब वापस चले जाएंगे। इसे यमराज ने क्या किया, भगवान को आदर सत्कार दिया लेकिन गेट के बाहर ही खड़ा रखा और संदीपनि मुनि का लड़का लाके दे दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ही नियम कानून बनाते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने नियम को तोड़ भी देते हैं। उसकी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा नहीं कि सब जनरल है, तो कोई जज है, जज ये भौतिक उदाहरण हुआ जड़ जगत का, लेकिन भगवान तो सुप्रीम जज है ना, वो चाहे उनकी मर्जी हो किसी को माफ कर दें, वो चाहे किसी को दंड दें, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोकों में जो 8वां श्लोक है उसका भाव यही है, आश्लेषवा पादुरतांग पिनष्ट माम मदर्शनात् मर्महतांग करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सव एव नाप। चाहे आप दर्शन दे के खुश करो, चाहे दर्शन न दे करके हमारे चित्त को मर्माहत कर दो, लेकिन आप ही मेरे इष्ट देव हर हालत पर रहेंगे। ये कभी कभी भगवान की परीक्षा भी हो सकती है हमारे लिए कि हमको कितना चाहता है। तो एक जज का, और जज लोग भी कभी कभी माफ कर देते हैं, क्यों नहीं करते, अगर उसके अधिकार में आता है, उसकी खूब चमचागिरी करोगे। और ये कबूल, ये भी तो तात्पर्य में दिया है ना कि अपराध रहित नाम हो। आप किसी जज से कहें मैं दोबारा ये अपराध कभी नहीं दोहराऊंगा, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपके चरणों के आश्रय में मैं संकल्प लेता हूं दोबारा अपराध नहीं करूंगा, लेकिन इस बार मुझे चांस दे दीजिए, अगर जज के अधिकार क्षेत्र में होगा जरूर माफ कर देगा। हां कोई ये कहे इस बार छोड़ दीजिए फिर एक महीने बाद फिर आऊंगा, फिर दूसरा मर्डर करके आऊंगा चोरी करके आऊंगा तब माफ थोड़ी करेगा। तो भगवान के आगे भी कोई कबूल करे मैं अपराध नहीं करूंगा, प्रत्यक्ष पश्यति गुरु न पिना अपराधान सेवा मनाग विकृतांग बहुधा विपेती आविष्करो पिशन सुबिना सुयांग शिले ने निर्मलमति पुरुषोत्तमोयंग। भगवान के आगे भी अगर हम कहें कि दोबारा हमें अपराध नहीं करेंगे, आपके चरणाश्रित होना चाहते हैं, आपके नाम के आश्रय में होना चाहते हैं, तो भगवान तुरंत कृपा करते। और लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं हर किसान, व्यक्ति या तो लोभ के खातिर भगवान को याद करता है या भय के खातिर, भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम भाव से सिर्फ उनके भक्त याद करते। तो ये बहुत रेयर केसेज है कभी अगर ऐसा होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे आपने कहा, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रसंग छेड़ दिया, हो सकता है वो सुअर बहुत भाग्यशाली हो, वो मुस्लिम बहुत भाग्यशाली हो, तो कोई प्रसंग उन्होंने छिड़ा हो उसके, इसको भगवान के हेतु की कृपा कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उसके विषय में बात करो। और कुछ हाँ, उद्धार हुआ ना उसका, क्योंकि नाम जपने लगी ना। हरिदास ठाकुर प्रसंग में जो वैश्या है वो नाम जप करने लगी बाद में, और उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दिया तो उसका उद्धार होगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर की पद चिन्हों पर चलने लगी तो जरूर उद्धार होगा उसका नाम से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।